हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी विधिक के घर पर न्यूयॉर्क में थी। उसने अपने लिए केक बनाया था और वो विधिक को टेस्ट करवाने के लिए लेकर गई थी। अचानक ही विधिक ने उसके मुंह में केक डालकर उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर आंशी गुस्सा हो गई और वो उसके कमरे से बाहर निकालकर दौड़ते हुए घर के एंट्रेंस से बाहर बने फार्म में आ चुकी थी। न्यूयॉर्क में ठंडा मौसम होने की वजह से वहाँ स्नोफॉलिंग हो रही थी। आंशी ने घर के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे क्योंकि घर का हीटिंग सिस्टम था। बाहर आते ही आंशी को ठंडी हवा महसूस हुई और वो ठिठुरने लगी। आंशी ने जल्दी से हाथ बांध लिए और अपने हाथों से खुद को सहलाने लगी। वो सुबकते हुए बोली, नहीं आंशी, तुम हार नहीं मान सकती। मुझे अमन को डिसअपॉइंट नहीं करना है। मेरी हार उसकी हार होगी, इसलिए सब सहना होगा। ये तो शुरुआत है, आगे पता नहीं ये क्या कुछ नहीं करेगा। मुझे हार नहीं माननी। आंशी वहां खड़ी खुद को समझा रही थी। खुद से बातें करने के बाद आंशी की आंखों में आंसू आने लगे। इस वक्त वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो विधिक था, जो अम्ब्रेला के साथ आंशी के पीछे खड़ा था। आंशी ने नम आंखों से विधिक की तरफ देखा तो विधिक ने कोल्ड वॉइस में कहा, घर के अंदर चलो बटरफ्लाई, यहाँ रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है, इस हवा को और बर्फ को महसूस करना है विधिक, चाहे फिर मैं बीमार क्यों ना हो जाऊं। आंशी ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। वो विधिक की अम्ब्रेला से भी बाहर निकल आई थी। आंशी के इस तरह मना करने पर विधिक की आंखों में गुस्सा था। वो उसी अंदाज में बोला, तो तुम मुझे सजा देने के लिए खुद को सजा देना चाहती हो बटरफ्लाई, एक नॉर्मल से किस की इतनी बड़ी सजा। आंशी ने ना में सिर हिलाया और कहा, ये तुम्हारे किस की सजा नहीं है विधिक, ये सजा मैं खुद को दे रही हूँ। तुम पर भरोसा करके मैं तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं करते। मेरा कोई नहीं रहा है विधिक, और मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अभी भी यही लगता है मैं एक स्पाई हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास यकीन दिलाने को कुछ है भी नहीं। अब प्लीज चले जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। मैं बीमार हो भी जाऊंगी तो मुझे तुम पर इतना यकीन तो है कि तुम मेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड करवा दोगे। विधिक ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर आंशी को हामी भरते हुए कहा, ठीक है, रुक सकती हो। आंशी को हैरानी हो रही थी कि विधिक ने उसे बाहर रुकने के लिए हाँ कैसे कह दिया था। वो तो उसकी बहुत परवाह करता था। फिर उसने देखा विधिक ने जो अम्ब्रेला पड़ा था वो उसने छोड़ दिया और वो भी वहीं पर खड़ा था। विधिक ने आंशी की तरफ देखकर धीरे से कहा, जितनी देर रहना है रह सकती हो, मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ। यकीन मानो बटरफ्लाई, मेरा प्यार हर चीज़ से बढ़कर है। बोलते हुए विधिक ने अपना जैकेट निकाली और आंशी के कंधे पर रख दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। आंशी वहाँ खड़ी विधिक की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें ग्रे कलर की थीं और इस वक्त उनमें काफ़ी सारे सवाल थे कि आंशी ये सब आखिर क्यों कर रही है। लगभग आधे घंटे तक आंशी और विधिक वहाँ पर चुपचाप खड़े रहे। आंशी ने देखा विधिक का चेहरा ठंड से लाल हो गया था और उसकी बॉडी भी ठंडी पड़ने लगी थी। आंशी विधिक से थोड़ा दूर खड़ी थी। वो उसके पास आई और कांपती आवाज में कहा, अंदर चले जाओ विधिक, तुम्हारी हालत खराब हो रही है, तुमने कुछ पहना भी नहीं है। आंशी की तरफ देखकर विधिक कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, क्या लगता है बटरफ्लाई, हम दोनों में से ज्यादा जिद्दी कौन है? तुम जो मुझे भागती फिर रही थी, या मैं जो तुम्हें अपने करीब आखिर ले ही आया? जब तक तुम अंदर कदम नहीं रखोगी मैं यहाँ से एक पैर भी नहीं उठाने वाला। आंशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विधिक से प्यार करे या उस पर गुस्सा, जो उसे अंदर लाने के लिए इस तरह जिद पर अड़ा था। आज भले ही आंशी विधिक से नफरत करती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आंशी विधिक की ऐसी हालत कभी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने विधिक का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगी। ठीक है, तुम जीत गए और मुझसे ज्यादा जिद्दी हो, आगे से ऐसी हरकत मत करना विधिक, आंशी ने कहा। उन दोनों की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि दोनों को कितनी ठंड लग रही थी। आंशी विधिक को उसके रूम में लेकर गई। वहां आते ही विधिक ने कांपती आवाज में कहा, मुझे ठंड लग रही है बटरफ्लाई, बहुत ज्यादा ठंड। विधिक रुको तो मैं कुछ करती हूँ, आंशी ने जल्दी से जवाब दिया। वो विधिक के लिए परेशान हो रही थी। उसने सबसे पहले रूम का टेम्परेचर हाई किया और फिर विधिक के शर्ट के बटन खोलने लगी, जो स्नो की वजह से भीग गया था। आंशी विधिक का शर्ट निकालते हुए बोली, तुम पहले चेंज कर लो, उसके बाद बेड पर चले जाना। मैं बुआ को बोलती हूँ, वो डॉक्टर को कॉल। आंशी बोलते हुए अचानक रुक गई। विधिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और कसकर पकड़ रखा था। विधिक गहरी सांसें ले रहा था। वो उसी तरह से बोला, मुझसे दूर मत जाना बटरफ्लाई, ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। आंशी ने विधिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे सहला रही थी ताकि विधिक बेहतर महसूस करे। कुछ देर बाद विधिक आंशी से अलग हुआ। आंशु ने विधिक की ड्रेस चेंज करने में हेल्प की और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। थोड़ी ही देर में विधिक नॉर्मल हो गया था। वो आंशी के चेहरे की तरफ देख रहा था जो उसके पास में बैठी थी, और उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे। विधिक आंशी की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और अपने मन में कहा, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है बटरफ्लाई, और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी फीलिंग्स को फिर से रिवाइव करने में। सो जाओ विधिक, तुम्हें आराम की जरूरत है, आंशी ने जवाब दिया और फिर रूम की लाइट बंद कर दी। वो कमरे से बाहर आ गई थी। बाहर आते ही आंशी लिविंग रूम में जाकर बैठी। वो अमन के बारे में सोच रही थी। मैं तुमसे कैसे कॉन्टैक्ट करूं और तुम्हें क्या बताऊं कि इस वक्त मैं कहां हूं, जबकि मुझे खुद ही कुछ पता नहीं है। तुम सबने मुझे बहुत समझाया था कि मैं यहां ना आऊं। शायद तुम लोग सही थे। विधिक को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। पहले की बात अलग थी क्योंकि मुझे विधिक की सच्चाई पता नहीं थी और वो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करता था, लेकिन अब विधिक को मुझ पर कहीं ना कहीं शक है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं। आंशी वहां परेशान हालत में बैठी थी। उसे गायब हुए आज चौथा दिन था। उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। आंशी को वहीं लेटे हुए नींद आ चुकी थी। आंशी को विधिक के पास गए हुए लगभग 20 दिन का वक्त बीत चुका था। अब तक उसे एक बार भी अमन और उसकी टीम से कॉन्टैक्ट करने का मौका नहीं मिला था। इंडिया में अमन के स्टाफ ने विधिक का होटल ज्वाइन कर लिया था। अमन उनसे पल पल की अपडेट लेता रहता था। जब से उन लोगों ने ज्वाइन किया था ऊपर कुछ नहीं पहुंचता था। दिन में एक बार क्लीनिंग और मेंटेनेंस स्टाफ विधिक के घर की देखरेख करते थे। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने समझ लिया था कि आंशी और विवेक वहां पर नहीं है। इसी सिलसिले में एजेंसी में मीटिंग हो रही थी। मिस्टर दत्त ने मीटिंग हेड करते हुए कहा, इस बात की पॉसिबिलिटी पहले से थी कि विधिक आंशी को लेकर कहीं भी निकल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी वो चला जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या लगता है विधिक आंशी को लेकर कहां गया होगा, मिस्टर जिंदल ने पूछा। इस वक्त उनके चेहरे पर आंशी के लिए गहरी परेशानी के भाव थे। कुछ कह नहीं सकते हैं, वो पहले आंशी के साथ पेरिस में रहता था। पेरिस में हमने वहां की एजेंसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। कॉन्टैक्ट होने पर पता चलेगा कि विधिक के ठिकाने और कहां पर है, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया।
जैस इस बीच लैपटॉप पर लगा हुआ था और वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कॉन्टैक्ट होते ही जैस जल्दी से बोला, मैंने मेट से कॉन्टैक्ट किया है, याद है ना मेट, वही है जिसने आंशी को ट्रेनिंग दी थी और मलिक के चंगुल से छुड़ाया था। अमन जल्दी से कॉल पर आया और उसने मेट से बात करते हुए कहा, मेट विलियमसन, अमन कपूर हियर, मैंने मेल में तुम्हें पूरे मिशन की इन्फॉर्मेशन भेजी थी। क्या तुम जानते हो विधिक राणा इस वक्त पेरिस में है या किसी और जगह? सामने से मेट की आवाज़ आई। अगर वो पेरिस आता तो हमारी टीम को पता चल चुका होता। उसके बाकी ठिकानों का कुछ खास पता नहीं है क्योंकि पिछले एक साल से वो किसी के सामने नहीं आया है। पिछले दिनों उसके इंडिया होने की बात पता चली थी, पर तुम जानते हो कि उसकी पब्लिक इमेज कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, हम डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर सकते। मेट के मना करते ही उन सबके चेहरे पर निराशा के भाव थे, खासकर अमन के। वो कॉल कट करने को हुआ कि तभी सामने से मेट की आवाज़ आई, आंशी जिंदल, अंश वापस उसके पास फंस चुकी है क्या? अमन ने मेट की बात पर हामी भरते हुए कहा, वो एक मिशन के चलते उसके पास गई है, हमने पूरी तैयारी की थी पर विधिक टाइम से पहले ही उसे अपने साथ ले गया। आइडिया काफ़ी अच्छा है किसी भी शख्स को हराने का, उसी की कमजोरी को हथियार बनाकर उसके सामने छोड़ दो, लेकिन ये आइडिया गलत जगह ट्राई किया है। वो विधिक राणा है, उस लड़की के गायब होने के बाद उसने आधे यूरोप में तबाही मचा दी थी। सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग अंश को वापस ढूंढताओगे, मेट ने सीधे सीधे जवाब दिया। आंशी के लिए उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। विधिक अमन ने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। मेट से बात करने के बाद मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, मैंने समझाया था उस लड़की को कि ये बेवकूफ़ी ना करे, तुम तो रोक सकते थे उसे अमन, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनती, मेरी ही गलती है, मुझे बहुत पहले उसे स्विट्ज़रलैंड भेज देना चाहिए था, बोलते हुए उन्होंने मिस्टर दत्त की तरफ देखकर कहा, आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया तेज, वो इनोसेंट है और आपने उसे उस शैतान के पास फंसा दिया। मिस्टर जिंदल गुस्से में उठकर वहां से चले गए थे, तो वहीं अमन ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी वहां से जाने लगा। ये मिस्टर दत्त का ही आइडिया था कि वो आंशी को विधिक के पास भेजे, और अब उन्हें भी अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था।